नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। उन्होंने भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास, दूरदर्शी दृष्टिकोण के आधार पर भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं की पहचान की। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त न करने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया और इस खतरे से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि दर 6.5% थी। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसके 201 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका अनंतिम अनुमान 187 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक जनगणना अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस चरण में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना का काम होगा, इसमें व्यक्तियों की गिनती होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। हालांकि दुर्गम क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। श्री नड्डा पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई की कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में बड़े बदलाव हुए हैं जो वैश्विक व्यवस्था को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। भारत वाइमर प्रारूप की बैठक में अपने संबोधन में डॉ जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता देखी जा रही है। उन्होंने वाइमर प्रारूप की बैठक के लिए भारत को मिले निमंत्रण की सराहना की। इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के उनके समकक्ष शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ और यूरोप के साथ भारत के संबंधों में आज सबसे ज्यादा विकास की गुंजाइश है। डॉ जयशंकर ने वेनेजुएला में हाल की घटनाओं पर भारत की चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। लक्जमबर्ग में भारतीय समुदाय से बातचीत में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की।
कई दशकों से वहां आतंकवादी शिविर चलते आ रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों से खुलेआम ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान और उनकी सेना न केवल आतंकवाद को संरक्षण देते हैं बल्कि उसे सामान्य और वैध ठहराने का प्रयास भी करते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो।
वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका ने एक बड़ी पहल की घोषणा की है। इसके तहत वहां के कच्चे तेल की दुनिया में बिक्री के लिए कुछ प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन की ओर से पेश किए गए इस ऐतिहासिक समझौते का मकसद अमेरिका के हितों की रक्षा करना, वेनेजुएला के ऊर्जा उत्पादन को बहाल करना और दोनों देशों के लिए राजस्व जुटाना है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने कहा है कि वेनेजुएला के कच्चे तेल से होने वाली सारी कमाई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंकों में अमेरिका द्वारा नियंत्रित खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश के अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक खास अभियान चलाया है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी रेलवे लाइन के पास 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी देश में रह रहे थे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और राजस्थान में शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आज शीतलहर की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। इस बीच देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं बाधित हुई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।